बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियां हम पे बरसा रही, प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियां कितनी हर्षा रही, तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए।
शांति। अमेरिका में एक स्कूल में एक 8 साल के बच्चे की ये ड्यूटी थी कि स्कूल में जल्दी जाए और वहां पर एक चूल्हा सा था उसमें थोड़ी आग जलाए ताकि वहां के कमरे का वातावरण थोड़ा गर्म हो जाए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा रहती थी। तो एक बार वो 8 साल का बच्चा आया और वो चूल्हे जैसा जो था स्टोव वहां आग जला ही रहा था कि पूरे स्कूल को आग लग गई वो जलाते जलाते, और वो इस तरह झुलस गया कि वहां पर बेहोश सुध-बुध खोया पड़ा रहा। जब सब लोग आए तो उसको उठाया, अधमरा सा अस्पताल पहुंचाया और बचने की उम्मीद नहीं थी, बहुत बुरी तरह से वो जल गया था, शरीर का निचला हिस्सा सारा, और वो बिस्तर पर पड़ा था और वो सुन रहा था। डॉक्टर उसकी मां से कह रहे थे कि ये बच्चा बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि बर्न्स इंजुरी है, बर्न इंजुरी बहुत ज्यादा है, पर ये जो बच्चा था इसने मन ही मन संकल्प किया कि मुझे जीना है। उधर डॉक्टर साहब बता रहे मम्मी को और ये इधर संकल्प करता है कि मुझे जीना है, और वो नहीं मरता पर अभी भी अस्पताल में ही है। एक दिन फिर सुनता है डॉक्टर साहब मम्मी को कह रहे हैं कि ये बच तो गया परंतु न बचता तो शायद अच्छा होता क्योंकि इसके जो पैर है इतनी बुरी तरह जल गए हैं, मसल और मसल मास है ही नहीं, ये सारी जीवन भर अपाहिज रहेगा। और ये वो सुनता है छोटा बच्चा और सोचता है मैं तो चल के रहूंगा, और फिर 22 मास बाद 22 मंथ्स व्हीलचेयर पर उसकी मम्मी उसको घुमा रही है किसी बगीचे में, और फिर मम्मी कहीं गई है थोड़ी देर के लिए, और वो उठता है और वहां एक दीवार सी है और उसको पकड़ पकड़ के चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर कोशिश करता है और रोज ऐसा करने लगता है। फिर बहुत कोशिश करता है, रोज कोशिश करता है, स्कूल जाता है, पकड़ पकड़ के किसी का हाथ, फिर व्हील चेयर, फिर वॉकर और कुछ 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 पकड़ पकड़ के, और मन में ऐसे संकल्प करता है कि मुझे किसी भी हालत में केवल चलना नहीं है, दौड़ना है। पहले चलना चालू करता है जबकि मसल मास बहुत कम है, पर एक्सरसाइज करते रहता है दिन रात, दिन रात कोशिश करते रहता है, और फिर चल के जाता है स्कूल धीरे धीरे, और फिर दौड़ने लगता है और इतना दौड़ता है कि दौड़ते ही रहता है। फिर दिन भर उसको ऐसी खुशी होती है कि जहां भी जाना है दौड़ दौड़ के ही जाता है। 16th June 1934 ओलंपिक्स में 1.5 किलोमीटर की रेस थी जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया। एक व्यक्ति ने 4 मिनट 3 सेकेंड 8 मिली सेकेंड में पार किया। कितना? 1 माइल। 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। ऐसा आज तक नहीं हुआ था, और वो ये बच्चा था। इसका नाम था ग्लेन कनिंगहम, जिसको कहा जाता है कि आज तक उससे बड़ा रनर कोई हुआ ही नहीं। इसके पहले भी ओलंपिक हुई थी 33 की, उसमें वो फोर्थ या फिफ्थ आया, परंतु ये वो व्यक्ति था कि जिसका पैर जल चुका था बचपन में। ये वो व्यक्ति था जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये बचेगा ही नहीं, और बाद में कहा था बचेगा तो चल नहीं सकेगा। 1.5 किलोमीटर कितने मिनट में? 4 मिनट में, 4.5 मिनट में। कई लोगों का कहना है ये संभव भी नहीं है। 1.5 किलोमीटर मतलब यहां से कहां तक? आधा नक्की लिख। उस टाइम, उसके बाद शायद तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया, पर उस समय तक ये रिकॉर्ड कभी तोड़ा ही नहीं गया था। कैंसस अमेरिका, वहां गया, वहां पे उसने कुछ पढ़ाई की, डिग्री ली और फिर रिटायर हुआ, और बाद में पूरा जीवन उसने जो गरीब बच्चे होते हैं अनाथ उनकी सेवा में लगा दिया। ऐसे 9000 बच्चों की पालना की उसने अलग रीति से। वो अलग भाग है उसके जीवन का। तो कहने का भाव, दृढ़ संकल्प से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये बच्चा ऐसा रनर बन सकता है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दे सकता है जो किसी ने सोचा नहीं था, तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट संडे की मुरली सम्मेलन में आए हुए गेस्ट से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने? बच्चे हो, मेहमान हो या फिर अधिकारी हो, प्रश्न पूछा, उत्तर दिया कि तुम अधिकारी हो, बच्चे हो, तो यहां से जब जाओगे, अब आप करना क्या है आगे? यहां से जब जाओगे तो एक काम करना, बाप को सदा साथ रखना, और साथ रखने की विधि क्या है? याद में रहना, बाप के साथ कंबाइंड रहना। ये मत कहना देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, नहीं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। कुछ भी दृढ़ संकल्प से अगर किया जाए तो वो हो सकता है, कुछ भी। कोई ठान ही ले बस करना ही है, कुछ भी, तो वो होगा। केवल हमारे संकल्पों में ढीलापन है, स्क्रू थोड़ा टाइट करना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा जो संकल्प करोगे वो होगा, जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता प्राप्त होगी। तो क्या करो? दृढ़ संकल्प फॉर्म डिटर्मिनेशन. कुछ भी चीज, वो अमृत वेला हो, वो मुरली चिंतन हो, वो रूहानी ड्रिल हो, या नुमा शाम का योग हो, कुछ याद रखना हो, कोई स्किल, कोई कला, कोई कौशल में महारत हासिल करना हो, कोई एग्जाम देनी हो, कुछ विद्या, कोई शास्त्र, कोई पढ़ाई पढ़नी हो, कुछ भी, एक ही चीज चाहिए. क्या? दृढ़ता. संकल्प चाहिए, संकल्प. अगर ये बच्चा ये कर सकता है तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता. कितना लोगों ने उसको दुखी किया होगा बचपन में, कितने ताने मारे होंगे, तुम क्या सोच रहे हो ये, परंतु उसने हार नहीं मानी और करके दिखा दिया जो कोई नहीं कर सका था संसार में. तो लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, बहुत श्रेष्ठ हो. तो लास्ट संडे की मुरली उस दिन रिवाइज की थी, 8 बातें देखी थी. कौन कौन सी निखिलेश भाई? एक से एक बात. कौन सी? पहला, पुरुषार्थ करना है. पुरुषार्थ अर्थात स्वयं को इस रथ में पुरुष समझना, यह है पहली बात. दूसरी बात, दो बातें ये समझोगे तो दो चीजें होगी. कौन कौन सी? एक तो मौज और दूसरा खुशी. तो ये मौजों का जीवन है संगम युग. कलयुग कौन सा जीवन है? मूंझने का जीवन है. अगर यहां रहकर मूंझते हैं अर्थात पैर कलयुग में है, एक पैर कलयुग में है, उंगली भी नहीं, नाखून भी नहीं रहना चाहिए उधर, पूरा इधर. मौजों का जीवन है, रूहानी मौजों का जीवन है. उधर मूंझने वाले बहुत है, इधर तो मौज में रहने वाले थोड़े हैं. भोगियों का तो संसार ही है, त्यागियों की कमी है. पर हमारा त्याग मौज है, ये एक दूसरी बात है. तीन में तीन बातें थी, तीन सौगात. पहली सौगात, खुशी का साज, खुशी का श्वास का साज. हर समय तुम खुश हो, जैसे श्वास आता जाता है, रुकता नहीं है. रुकना अर्थात मृत्यु, उसी तरह तुम्हारी खुशी निरंतर है. दूसरा, नूरे रतन. मैं कौन हूं? नूरे रतन हूं, बाप के नैनों में समाई हुई आत्मा हूं. और तीसरा, बाप का हाथ और साथ. ये दो बोल बाबा सौगात देते हैं और ये पहली सौगात शुरुआत में दी. तो हाथ कौन सा और साथ कौन सा? हाथ आशीर्वाद, साथ सहयोग का. तीन से तीन बातें, चार से चार बातें. अभी की जो तुम्हारे यादगार है उधर चार यादगार बन जाएंगे. जो तुम बोलोगे वो शास्त्र बनेंगे, जो तुम करोगे वो चरित्र बनेंगे, जो तुम स्मृति स्वरूप रहोगे वो सिमरन बनेगा, और जो तुम शुभ भावना शुभ संकल्प करोगे वो दुआ बनेगी. चार से चार बातें. फिर उसके बाद में पांच से पांच बातें. संगम युग के पांच, शिवरात्रि के पांच नाम. बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती पहला. दूसरा, ये वंडरफुल जयंती है, ये अवतरण जयंती है, ये अलौकिक जयंती है, अलौकिक बर्थडे है. संगम युग के शिवरात्रि के पांच नाम. फिर छह से छह बातें. 3:30 बजे तक बाबा थे सुबह, चार छह वरदान दिए. अविनाशी भव, संपन्न भव, समान भव, विश्व कल्याणकारी भव, रहम दिल भव, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले भव. छह वरदान शुरुआत में जब जा रहे थे, जाने से पहले तीन और झंडा लहराते समय तीन. छह से छह बातें. अब सात से सात बातें. कौन सी? कौन था क्लास में उस दिन? मुरली गई और सब गया. संडे गया, मुरली गई. संडे के दिन छुट्टी. सात से ज्योतिष विद्या की सात बातें तुम्हारी समान है. तिथि भी समान, तारीख भी समान, वेला समान. जो बाप की जन्म की वेली वो तुम्हारे जन्म की वेला. दशा, दिशा, रेखा, नाम, ये सातों ही चीजें तुम्हारी ज्योतिष विद्या की बाप के समान है. फिर उसके बाद में आठ समान थे जो पूरी मुरली थी. सबसे पहले आज भोलेनाथ भोले भंडारी बाप किस किस को देखते हैं? सबसे पहला स्नेही आत्माओं को. तो हम सब कौन है? स्नेही. दूसरा सहयोगी आत्माओं को, तीसरा सहजयोगी आत्माओं को, चौथा सब खजानों से संपन्न आत्मा जो बालक सो मालिक है, इसका अलौकिक नशा तुमको होना चाहिए। फिर खुशनसीब आत्माओं को, छठवा संपन्न आत्माओं को, सातवा मैं अवतार हूं। अवतार अर्थात कौन सी स्मृति देवेंद्र भाई? संडे की मुरली। अवतार अर्थात कौन सी स्मृति? अवतार अर्थात कौन सी स्मृति? अवतार अर्थात कौन सी स्मृति? पिछले संडे की, पिछले संडे के पिछले संडे की मुरली थी दिव्य बुद्धि, फिर थी दिव्य नेत्र, और ये थी दिव्य जन्म वाली आत्मा हूं, विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूं। अवतार अर्थात ये स्मृति, मैं अवतरित हुई हूं विश्व परिवर्तन के लिए। और आठवां समान, मैं डबल हीरो हूं। डबल हीरो कौन सा? एक तो हीरे तुल्य जीवन और दूसरा हीरो पाटधारी। तो ये थी आठ बातें। आज हम देखेंगे नौ से नौ बातें। नवरात्रि चल रही है ना, तो नौ से नौ बातें कहां से निकालेंगे? दादियों से मुलाकात और गेस्ट से मुलाकात। तो दादियों से मुलाकात में नौ बातें। पहली, दादियों को क्या कहा बाबा ने? सबसे पहली बात, स्नेह की बाहों में समाई हुई आत्माएं हो। कितनी अच्छी बात है ये। हम कौन आत्माएं हैं? स्नेह की बाहें बहुत बड़ी है बाबा ने कहा, इसमें सब समा जाते हैं। और जब स्नेह की बाहों में समाए हो तब क्या बन जाते हो प्रकाश भाई? माया जीत। आज की मुरली में महावाक्य है, माया को तुम भूतों को कैसे भगाते हो? बाप को याद करो, एकमत में रहो तो माया भाग जाएगी। इसने कहा कि स्नेह की बाहों में रहो भाकी, तो माया जीत बनोगे। दादियों को बाबा कह रहे, तुम सभी आत्माएं वो श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निरंतर बाप के स्नेह की बाहों में, भाकी में समाई हुई आत्माएं हो। इसलिए कौन हो? माया जीत हो। गले मिलना ठीक लगता है? बाप के गले मिलना कितना बड़ा भाग्य है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भगवान भी आके गले मिलाता है। वो सुदामा ने सोचा नहीं था, वो तो सोच रहा था थोड़ा बहुत देखता हूं मिलता है क्या, तो लेके गया बेचारा अपना छिपा छिपा के। और उधर कृष्ण ने क्या कर दिया? उसके तो पैर धोए, उसको गले मिलाया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सारी रानियां जेलस, जलने लगी, हमको कभी किया नहीं आज तक, मुझे इससे कर रहे। तो स्वयं भगवान ही गले लगा दे, कितना बड़ा भाग्य है। तो दादियों को सबसे पहली बात बाबा ने कहा, कहां समाई हो? स्नेह की भाकी में, स्नेह की बाहों में। और बाप की बाहें कैसी है? बेहद। बेहद अर्थात, बेहद अर्थात कल की मुरली साकार, बेहद अर्थात कल की मुरली साकार, बेहद अर्थात बेहद पवित्र बनो, बेहद अर्थात ढूंढना। पर आज की मुरली आज पढ़ेंगे तो कल की कौन ढूंढेगा? आज की चाहिए सबको। क्या होता है नशा किसका होता है? आज की मुरली है। कोई कहे ये चार दिन पहले की मुरली, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्या करना है, उधर दे दो लाइब्रेरी में। चार दिन पहले का तो किसी को चाहिए ही नहीं, आज का चाहिए एकदम ताजा फ्रेश। बेहद माना सबका, कल की साकार मुरली, बेहद माना सबका। बेहद माना सबका, समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। समय पर ढूंढ लेना, ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। इतनी चार पेज की मुरली और एक मिनट में आपने ढूंढ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी है, पर ढूंढ लेना या खोज लेना या याद कर लेना, ये भी बेहद अर्थात सबका। तो सबसे पहली बात, नौ बातों में आठ बातें उधर हो गई थी, नौवीं दादियों की। तो पहली दादी अर्थात स्नेह में समाई हुई आत्माएं। तो हमको भी क्या अभ्यास करना है? हम स्नेह में समाये हुए, स्नेह की भाकी में समाये हुए हैं, तो क्या रहेंगे? माया जीत रहेंगे। दूसरा ब्रह्मा का मुख, दूसरा ये, दूसरा ब्रह्मा का मुख, कितने मुख होते हैं ब्रह्मा के? तीन और पांच, और होते चार। शास्त्रों में दिखाया है ब्रह्मा कहां से, स्वयंभू बताया है, विष्णु लेटा हुआ है, नाभि से कमल निकला और कमल के अंदर से ब्रह्मा निकला, और निकलते ही उसको लगा मैं कहां हूं, चारों तरफ देखा और जितनी तरफ देखा उतने मुंह प्रकट हो गए। एक एक मुख एक एक दिशा को दिखाता है, और ब्रह्मा को सभी वेदों का रचयिता कहा जाता है, इसके लिए चार मुख चार वेदों के प्रतीक है। और ब्रह्मा की पूजा थोड़ी कम होती है, क्यों कम क्यों होती है, ब्रह्मा की पूजा क्यों कम होती है? नहीं, ब्रह्मा की पूजा कम क्यों होती है और विष्णु की क्यों ज्यादा होती है? ना? शास्त्रों में क्या लिखा है, जैसे ही ये उत्पत्ति हुई संसार की, व्युत्पत्ति, एक है उत्पत्ति एक है व्युत्पत्ति, तो एक शिवलिंग प्रकट हुआ था लंबा बड़ा, और ये दोनों यहां थे, और इन दोनों को काम दिया गया कि ये कितना बड़ा है देखो, तो ब्रह्मा गया नीचे विष्णु गया ऊपर ढूंढते ढूंढते। ये जो ब्रह्मा नीचे गया ना, उसने फिर बोल दिया कि मैंने जान लिया, हाँ इसके लिए उसकी पूजा ही कम होती है। और ये जो विष्णु था, ये जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया अनंत तक जाते गया, क्योंकि शिव ने आदेश दिया था दोनों को, तो इसने थोड़ा सा कम जाना इसलिए उसकी पूजा भी कम होती है, इसलिए उसको दो ही मंदिर है विश्व में ब्रह्मा के, एक तो पुष्कर और दूसरा दूसरा थाईलैंड में इरावल टेम्पल है। मेन तो दो ही है, बाकी छोटे मोटे बहुत होंगे, विश्व भर में सबसे बड़े ब्रह्मा के दो ही मंदिर है, एक पुष्कर और दूसरा थाईलैंड में इरावल टेम्पल ऑफ ब्रह्मा। तो बाबा ने, वो छोड़ो अभी, ब्रह्मा अर्थात चार मुख, बाबा ने कहा कितने मुख, तुम सब ब्रह्मा के साथ तुम्हारा जन्म है, तो तीन लोगों का एक साथ जन्म हो रहा है, शिव बाबा एंट्री जन्म, ब्रह्मा के अंदर एंट्री उसका जन्म, और उसके साथ सारे ब्राह्मण परिवार का जन्म, चाहे वो तब थे या बाद में आने वाले, मानस पुत्र। ब्रह्मा के कितने बेटे थे? छह, एक सनक आदि चार, वो सनक सनंदन और एक दक्ष और एक नारद, ब्रह्मा के छह बेटे थे। पत्नी, पत्नी किसको दिखाया है शास्त्रों में? सरस्वती। ये शास्त्रों की बातें है सारी, पत्नी दिखाया है, छह बेटे एक पत्नी चार मुख कमलासन और ब्रह्मा ब्रह्मलोक जहां वो रहता है, एक था कैलाश का, एक ब्रह्म और एक क्षीर सागर, तीनों को तीन डिपार्टमेंट है ना अलग अलग, एक बनाने का एक पालन करने का और एक विनाश का। हाँ हाँ ये तो बात सोची नहीं, इधर भी लौकिक में ब्रह्मा के छह थे या पांच, छह 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 बराबर राइट। उधर सारे बेटे थे पर तो ब्रह्मा कितना कंपैरिजन है ब्रह्मा का, उसको दाढ़ी दिखाया, कोई किसी देवता को दाढ़ी बिड़ी नहीं है, ये एक ही है जिसको बूढ़ा दिखाया और दाढ़ी दिखाई है, और इसको कमल आसन पर दिखाया हमेशा, और व्हाइट में दिखाया है, विष्णु व्हाइट में थोड़ी है, और शंकर जी का तो जरूरत ही नहीं है कुछ वस्त्रों से परे है। और ब्रह्मा को सन्यासी नहीं दिखाया है, शंकर को सन्यासी दिखाया है, वो गृहस्थी दिखाया है। हाँ पर वो तो रहता उधर ना, हाँ सेवा के लिए उसकी गृहस्थी अलग है, इसको अलग दिखाया है। तो बाबा ने कहा ये फर्स्ट पॉइंट था, आर्म्स अपना बाही बाहो वाला, दूसरा तुम सब कौन हो? ब्रह्मा के मुख हो, सहयोगी आत्माएं हो, तो हम ही उसके वो मुख है, एक एक मुख एक एक दिशा को दिखाता है, और एक एक मुख से एक एक वेद निकला, जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा तुम जो बोलते हो वो क्या बन जाता है? शास्त्र। तुम जो करते हो वो चरित्र, और तुम्हारा जो स्मृति है वो सिमरन, और तुम्हारी जो शुभ भावना शुभ कामना है वो दुआ है, ये चार चीजें हो जाती है उधर। तो ये हमारा यादगार है। तो हम ब्रह्मा के कौन है? मुख है। तो ब्रह्मा की वाणी और हमारी वाणी मैच होनी चाहिए। जैसे उसके मुख से ज्ञान निकला, तुम्हारे भी मुख से ज्ञान निकले। ये दूसरी बात। तीसरा, रौनक। किसकी रौनक हो? बाप के घर की रौनक हो, अर्थात विश्व रूपी घर की रौनक हो। बेहद अर्थात सबका, तो सारे विश्व की तुम रौनक हो। केवल एक मधुबन की रौनक नहीं, केवल एक ब्राह्मण परिवार की रौनक नहीं, क्योंकि संसार में पवित्रता का अकाल पड़ा हुआ है, चरित्र का अकाल है ही नहीं चरित्र, चारित्रिक पतन हुआ है संसार में। और ये तुम चरित्रवान आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो। यहां तो बाढ़ आई है फिर भी संसार डूब रहे हैं मेरा। फिर उसके बाद में चौथी बात, बाबा मालाएं पहनाते हैं तुमको। बाबा कौन है? नवदा भक्त भगवान नवदा भक्त कह रहा है खुद को। देखा, उधर भक्ति में भगवान को पूछते हैं और यहां भगवान कहता है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं। क्या करता हूं मैं? तुम्हारी मालाएं जपता हूं। और कितनी मालाएं जपता हूं? एक एक की, एक एक की विशेषता की माला जपता हूं, एक एक के गुणों की माला जपता हूं। और जब जब माला जपता हूं तो क्या हो जाता है? हो जाता है तुम फ्रेश। तो सुबह उठ के एक एक की माला, एक एक को डिपार्टमेंट को देखा, कमलेश की पहले माला, एक एक की माला जपना चालू करता है। इसमें यह विशेषता है, हाँ वो भी हो सकता है। बाबा ने कहा एक भी बच्चा नहीं है जिसको मैं याद नहीं करता, हर एक का सिमरन करता हूं। तो बाप बच्चों की मालाएं जपते हैं, सिमरन करते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुम एक की करते थे, यहां तो कितनों की मुझे करनी पड़ती है। बाप खुद ही नवदा भक्त है, नवदा भक्ति करते हैं बाप एक एक की। तो कितना टाइम लगता होगा उसको? इधर एक देवता की नवदा भक्ति करने को कितना टाइम लगता है, इधर एक एक की इतने सारे इष्ट देव बैठे हैं। तो तुम सब कौन है? एक एक की बाप बैठ माला जपता है। पांचवी बात, साथ। एक सेकेंड और पल पल बाप साथ रहता है। एक सेकेंड भी साथ ना रहा है ये हो नहीं सकता। पल पल बाप साथ है। ऐसी जोड़ी कभी तुमने देखी नहीं होगी, ऐसा कभी सुना क्या? ऐसी जोड़ी है कि बाप और बेटा एक साथ ही घूमते फिरते, एक मिनट भी अलग नहीं होते। डैडीज बॉय, इसको कहते हैं डैडीज बॉय। जैसे मम्मी इज बॉय होता है ना, मम्मी मम्मी करते रहता है हर चीज। किसको करना है ये करो, मम्मी से पूछ के। ये करना है मम्मी से पूछ के, हर चीज मम्मी से। मम्मी इज बॉय होता है ना, बड़े हो जाते हैं एकदम 20 साल के, मम्मी कहती है ये करो, अच्छा दूसरा कहता है ये करो, नहीं मम्मी से पूछ के आता हूं। हर चीज मम्मी से पूछेंगे। मम्मी का मम्मू के पल्लू नहीं छोड़ता है, उसकी मम्मी खिलाएगी तब खाना खाएगा। और बारीक बारीक करके देगा ना टुकड़े टुकड़े तब खाएगा। अभी 25 साल का हो गया है पर मम्मी खिलाएगी। मम्मी कहेंगे शादी करो तो शादी करेंगे, मम्मी कहेंगे इससे प्यार करो मोहब्बत करो तो प्यार करेगा, मम्मी कहेंगे इससे प्यार अब बंद कर दो अब नफरत करो तो नफरत करेगा। जैसे मम्मी कहेगी वैसे, इसको कहते हैं मम्मी इज बॉय। वैसे ये है डैडीज बॉय। तो डैडी और बॉय दोनों साथ साथ ही चलते। बाबा ने कहा ऐसी जोड़ी तुमने कहीं देखी नहीं होगी, नंबर वन जोड़ी बाप और बच्चे की, एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही जन्म हुआ, ऐसा भी कभी देखा नहीं होगा। तो सब अद्भुत अलौकिक है यहां पर। तो निरंतर साथ का अनुभव, तू न जाने आस पास है खुदा, निरंतर वो साथ है। ऐसा अनुभव करना कि निरंतर वो साथ है। धुंधला जाए तो मंजिल मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही तेरे कदमों के है निशा। तू न जाने आसपास है खुदा, निरंतर वो खुदा साथ है। ये अनुभव कि मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां वहां वो है, मैं और वो अलग है ही नहीं, हम जुदा है ही नहीं, हम कंबाइंड है। इस अनुभव को बढ़ाना है, ये बहुत अच्छी एक तपस्या एक साधना है। उसके बाद में ये किसका बगीचा है? अल्लाह का बगीचा है, गार्डन ऑफ अल्लाह है। यहां एक एक की खुशबू कैसी है? आज कौन सा वार है? ज्यादा दिन तो नहीं हो गया ना संडे को? कितने दिन हो गए? नहीं, मुरली पूरी उड़ गई आर पार हरेक की खुशबू न्यारी है और हरेक की खुशबू प्यारी है, ऐसा ये क्या है, गार्डन ऑफ अल्लाह। तो ये हो गया उसके बाद में सातवा, आदि रत्न हो तुम। जैसे रत्नों का बहुत महत्व है संसार में, बाबा ने कहा एक रत्न है विघ्न विनाशक के लिए, और अंगूठी में जड़ते हैं ना रत्न डालते हैं, नवरत्न या वो रत्नों से बहुत कुछ होता है। तो बाबा ने कहा तुम एक एक रत्न, एक एक रत्न की विशेषता, एक एक रत्न की आवश्यकता, एक एक रत्न की वैल्यू है, तीन शब्दों का प्रयोग है। तो तुम कौन हो, आदि रत्न हो। उसके बाद में आठवीं बात, यहां दादियों का पूरा हुआ, आठवीं जो गेस्ट आए उनसे मुलाकात कर रहे, बाबा अपने आप को क्या समझते हो, मेहमान समझते हो, अधिकारी समझते हो या बच्चे समझते हो, तो क्या समझो, बच्चे समझते हो। बाप तुमको अपने घर में आए हो, तुम बच्चे हो यहां पे। और लास्ट पॉइंट, अभी क्या करना है, जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी कि क्या करना है, साथ रहना है, और साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखता हूं सोचता हूं करेंगे नहीं, दृढ़ संकल्प। जैसे बताया वो ग्लेन जो कनिंघम, छोटा सा बच्चा परंतु अपाइज होते हुए भी बचपन में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया उस बच्चे ने कर दिया। तो दृढ़ संकल्प क्या है, चाबी है, और इस चाबी को कभी भी खोना नहीं, सदा इस चाबी को अपने साथ रखना। तो जो भी करना है उसमें कैसे हो, दृढ़ संकल्प, बस ठान लिया। पर संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए क्या करना, अब ये दूसरा प्रश्न है। दृढ़ संकल्प तो करना है, पर संकल्प को दृढ़ कैसे बनाए, उसके महत्व को समझना। जैसे अमृत वेला अच्छा करना है, वो कैसे होगा, तो संकल्प दृढ़ कर लिया मुझे करना है, पर करने से खाली नहीं होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको बार बार। जैसे एक छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, पर उसके जो पिताजी थे हर बार बदलते थे, घोड़ों का व्यापार था, तो वो बदलते थे, कुछ दिन एक शहर में रहते थे 6 मास, फिर निकल के दूसरे शहर में जाते थे, फिर वहां भैंस घोड़ों का तबेला लगाते थे, फिर वो जो घोड़े जो रेस में यूज करते ना, वो बेचने का काम था उसका, उसके पिताजी का। तो वो हमेशा भटकते रहते थे, घुमक्कड़, ट्रेवलिंग, एक साल यहां रहे फिर वहां से दूसरी जगह। तो उसका जो एजुकेशन था बड़ा सफर करता था बच्चे का, क्योंकि वो एक जगह टिकते ही नहीं थे कहीं, कभी 6 महीना, कभी 7 महीना, कभी 8 महीना, कभी 1 साल, कभी 1.5 साल, तो फिर अचानक कभी चले जाते थे। स्कूल में उस बच्चे को एक बार स्कूल में प्रश्न पूछा गया, निबंध लिखो मुझे क्या बनना है जीवन में। तो उसने लिखा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके पास हजारों घोड़े होंगे, एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके अपना घोड़े का ये होगा, तबेला होगा, रैंच जिसको कहते हैं, वो जगह जहां पर घोड़े हो, और ऐसे हॉर्स रेसर, मतलब वो ऐसा बात कर रहा है जैसे मालिक होगा बहुत बड़ा। तो उसके टीचर पढ़ते हैं वो, और उसको टीचर को पता है ये तो एक जगह टिकता ही नहीं है, इसके पिताजी घूमते रहते। वो कहते हैं तुमने ये लिखा सही लिखा, पर ये अनरियलिस्टिक है, ये कभी भी होने वाला नहीं है, तुम क्यों ऐसी चीजें लिखते हो जो कभी होगी ही नहीं, और तुम कितने गरीब हो, और तुम लिख रहे हो कि मैं क्या बन जाऊंगा, इतने बड़ा आदमी बन जाऊंगा जिसके पास इतनी सारी चीजें हैं। वो बच्चा ज्यादा, जाओ अपने पिता को पूछो। वो अपने पिता से पूछता, मैंने ये लेटर लिखा था, ये लिखा था, और उसको फेल दे देती है, उसके टीचर देते थे फेल। वो कहता, जाओ अपने पिताजी से दूसरा लिखा के लाओ। वो जाता है अपने पिताजी से, बताता है ये मैंने लिखा, क्या करूं। तो पिताजी कहता है, ये अगर तुमने लिखा है ना, तो अब इसको देखो मन में, और एक बार देखो और दृढ़ संकल्प करो, फिर से दोबारा लिखो और फिर जाके दो। वो फिर से सोचता है सब कुछ करके, फिर से वो निबंध सबमिट करता है, पर वो वैसा के वैसा ही रहता है। फिर से वो टीचर हंसता है उसके ऊपर, और फिर से उसको एफ फेल करके दे देता है। और एक दिन वो लड़का इतना आगे चला जाता है कि उसके पास 200 एकड़ जमीन है, जिसके पास जिसमें बहुत सारे घोड़े हैं, और वो मालिक है, ये मोंटो रॉबर्ट उसका नाम, और 4000 स्क्वायर फुट का उसका घर है उसके बीच में, और उसके टीचर ने जो उसको कहा था ये कभी नहीं होगा, उसने वो करके दिखाया। उसने सोचा अब ये जो इन्होंने कहा ना नहीं होगा यही मुझे करना है, ये उसकी भी जिद थी, जो इन्होंने कहा ना तुम कर नहीं पाओगे अब यही मुझे करके दिखाना है। उस असफलता को, उस एफ को उसने फेलियर को एस बना दिया सक्सेस। कैसे? दृढ़ संकल्प से। सो जो भी दृढ़ संकल्प किया जाए उसको क्या क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए रोज रोज। जो भी दृढ़ संकल्प किया उसको क्या करना चाहिए? पानी डालना चाहिए। वो बीज है, उसको किसका पानी डालेंगे? प्रैक्टिस का पानी डालते रहो। और किसका पानी डालते रहोगे? योग का पानी डालते रहो, विजुअलाइजेशन का पानी डालते रहो। देखो उसको वो हो रहा है, चाहे वो भाषा है, चाहे कोई स्किल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई पुरुषार्थ हो। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, और हर चीज शुरुआत में बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन, और करते करते आसान बन जाती है। कोई ऊपर से स्किल लेके तो नहीं टपकता ना परमधाम से, कि सीधा ऊपर से लेके आता है अवतरण, सीधा यहां ही सीखता है संसार में सब कुछ। जितने स्किलफुल लोग हैं, जैसे उसका बताया छोटे बच्चे का, 1.5 किलोमीटर 4 मिनट में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया उसने उस समय 1934 में, जो कि साइंस कहता था असंभव जैसा है, ये कर दिया ना उसने, रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसके बाद में भी कितने रिकॉर्ड हुए होंगे, ये तो तब की बात है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो ऐसी ये 9 बातें। तो क्या क्या कहा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। दादियों से सबसे पहला कौन है? दादिया बाहों में। तो ये भी हमारा एक समान है, हम कौन है? बाहों में है, भाकी में है, इसीलिए माया जीत है। दूसरा ब्रह्मा के हम कौन है? मुख है। तीसरा रौनक है। चौथा माला है, भगवान हमारी सिमरन कर रहा है। किसकी माला भगवान सिमरन नहीं करता? एक दूसरा प्रश्न हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ करेगा, उसकी नहीं सिमरेगा। हाँ, जो उसकी नहीं सिमरता वो उसकी नहीं सिमरता। उसके बाद में पांचवा सात, एक पल और एक सेकंड भी बाप अलग नहीं है। उसके बाद में छठवा मधुबन के लिए कहा, एक एक खुशबू कैसी है, न्यारी प्यारी है। और लास्ट बात आदि रत्न है, एक 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 रत्न की विशेषता है, वैल्यू है और आवश्यकता है। कोई विघ्न विनाशक करेगा तो कोई कुछ करेगा, इस तरह से। और जो मेहमान है अपने आप को, नए लोगों को बाबा ने कहा मेहमान समझो ही नहीं, बच्चा ही समझो। तो हम भी क्या समझे, जो भी गेस्ट आते हैं मधुबन में, नीचे ऊपर कहीं पर भी, ये नहीं समझना ये गेस्ट है, क्या समझना, ये भी बाबा के बच्चे ही है, ये भी अधिकारी है, ये भी भावी देवता है, ये भी भावी ब्राह्मण है, अधिकार लेने आ गए हैं। हाँ ये भी अच्छा है, वो अधिकारी है, हम मेहमान, हम दुनिया में मेहमान है वैसे तो हम, नहीं तो अपने आप को मेहमान समझ के वीआईपी नहीं कर देना है, वो नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हम इस दुनिया में मेहमान है थोड़े समय के लिए। और लास्ट बात बताया बाबा ने, कंबाइंड रहो, साथ रहो, याद रहो, बाप को याद करो, और इसके लिए तुमको चाहिए दृढ़ संकल्प। अच्छा, ओम शांति।
मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है दिशा। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, मरोड़ता है हो सिला रे तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे कि चलता हूं मैं तेरे संग में हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा दब पाएगा दर मेरा उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह मर्जी